Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, November 2020 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6. प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सकें संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आपका स्वागत है. यदि आप अपने बचत या जमा खाते के बारे में जानना चाहते हैं तो एक डायल करें. यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो दो डायल करें. यदि आप पैसा लगाने के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो तीन डायल करें. यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी के खाली होने तक प्रतीक्षा करें. नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आपका स्वागत है. यदि आप अपने बचत या जमा खाते के बारे में जानना चाहते हैं तो एक डायल करें. यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो दो डायल करें. यदि आप पैसा लगाने के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो तीन डायल करें. यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी के खाली होने तक प्रतीक्षा करें.
संवाद दो.
भाई साहब, ये रबड़ी कब की बनी है?
अभी लगभग एक घंटा पहले तैयार हुई है. वैसे भी हम पुरानी मिठाइयाँ नहीं बेचते.
नहीं, गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए पूछ रही थी.
आपको रबड़ी घर ले जानी है या किसी को देनी है?
जी, घर के लिए लेनी है और बाहर भी भेजनी है.
घर के लिए तो रबड़ी ठीक है, लेकिन बाहर भेजने के लिए कोई और मिठाई चुन लीजिए.
क्यों, क्या रबड़ी शाम तक भी नहीं चलेगी?
रसगुल्ले तो चल सकते हैं, रबड़ी 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती.
भाई साहब, ये रबड़ी कब की बनी है?
अभी लगभग एक घंटा पहले तैयार हुई है. वैसे भी हम पुरानी मिठाइयाँ नहीं बेचते.
नहीं, गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए पूछ रही थी.
आपको रबड़ी घर ले जानी है या किसी को देनी है?
जी, घर के लिए लेनी है और बाहर भी भेजनी है.
घर के लिए तो रबड़ी ठीक है, लेकिन बाहर भेजने के लिए कोई और मिठाई चुन लीजिए.
क्यों, क्या रबड़ी शाम तक भी नहीं चलेगी?
रसगुल्ले तो चल सकते हैं, रबड़ी 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती.
संवाद तीन.
यात्री कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से पटना होकर हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शाम 4:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रवाना होगी. दिल्ली से जालंधर होकर उधमपुर जाने वाली माता एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में हो रहे हिमपात के कारण बंद है. लखनऊ से कानपुर होकर नई दिल्ली आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1 घंटा देरी से आ रही है. यात्री कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से पटना होकर हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शाम 4:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रवाना होगी. दिल्ली से जालंधर होकर उधमपुर जाने वाली माता एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में हो रहे हिमपात के कारण बंद है. लखनऊ से कानपुर होकर नई दिल्ली आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1 घंटा देरी से आ रही है। संवाद 4।
नमस्कार, इधर कैमरे की तरफ देखिए।
ओह, माफ कीजिए, मुझे कैमरे के बारे में मालूम नहीं था।
नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप?
जी, लंदन से।
आपका वीजा कहाँ है?
मुझे वीजा की जरूरत नहीं है, मैं तो विदेशी भारतीय नागरिक हूँ।
तो फिर अपना विदेशी भारतीय नागरिकता का कार्ड दिखाइए।
जी, ये लीजिए।
ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, इधर कैमरे की तरफ देखिए।
ओह, माफ कीजिए, मुझे कैमरे के बारे में मालूम नहीं था।
नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप?
जी, लंदन से।
आपका वीजा कहाँ है?
मुझे वीजा की जरूरत नहीं है, मैं तो विदेशी भारतीय नागरिक हूँ।
तो फिर अपना विदेशी भारतीय नागरिकता का कार्ड दिखाइए।
जी, ये लीजिए।
ठीक है, धन्यवाद।
संवाद 5।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि भारत ने मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय मोबाइल संघ के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल फोन का वार्षिक उत्पादन 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो चुका है, जो वियतनाम से कहीं ज्यादा है। देश में फोन उत्पादन बढ़ने के कारण इनका आयात भी घटकर आधे से कम रह गया है। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक चीन है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि भारत ने मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय मोबाइल संघ के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल फोन का वार्षिक उत्पादन 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो चुका है, जो वियतनाम से कहीं ज्यादा है। देश में फोन उत्पादन बढ़ने के कारण इनका आयात भी घटकर आधे से कम रह गया है। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक चीन है। संवाद 6।
बेटा, लगता है तुमको कहीं देखा है, क्या हम पहले मिल चुके हैं?
हाँ अंकल, मुझे भी आपका चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है।
कहीं तुम सुनीता के साथ तो नहीं पढ़ती थी?
नहीं अंकल, मैं तो भोपाल में पढ़ी हूँ।
अब समझा, भोपाल में तो मेरा भाई रहता है, गणित पढ़ाता है।
नहीं अंकल, मैं तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ती थी। आप भारत भवन जाते हैं क्या?
अरे अब याद आया, तुम ही तो भारत भवन की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। बेटा, लगता है तुमको कहीं देखा है, क्या हम पहले मिल चुके हैं?
हाँ अंकल, मुझे भी आपका चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है।
कहीं तुम सुनीता के साथ तो नहीं पढ़ती थी?
नहीं अंकल, मैं तो भोपाल में पढ़ी हूँ।
अब समझा, भोपाल में तो मेरा भाई रहता है, गणित पढ़ाता है।
नहीं अंकल, मैं तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ती थी। आप भारत भवन जाते हैं क्या?
अरे अब याद आया, तुम ही तो भारत भवन की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आई थी।
यह अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो प्रश्न सात। कैलिफोर्निया के तकनीक आविष्कार संग्रहालय के संग्रहपाल नील देसाई के साथ नए क्षितिज की संवाददाता प्रभा पाटिल की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। ये बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
नील देसाई जी, नए क्षितिज के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रभा जी।
नील जी, आपको अपने तकनीक आविष्कार संग्रहालय की बढ़ती लोकप्रियता और धाक की मुख्य वजह क्या लगती है?
आपकी बात सही है प्रभा जी। तकनीक आविष्कार संग्रहालय को बने लगभग 20 साल ही हुए हैं, फिर भी हमारे कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमें दूसरे संग्रहालयों से अलग और अनूठा बनाते हैं। जैसे विज्ञान और तकनीक के कठिन विषयों को सरल और रोचक बनाना, नए आविष्कारों और समाधानों की खोज के लिए मंच प्रदान करना और जलवायु जैसे सामयिक विषयों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
यानी आपका संग्रहालय वास्तव में एक तरह की प्रायोगिक पाठशाला है।
जी हाँ, एक ऐसी पाठशाला जो आपको तकनीकों और आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ नई तकनीकों के विकास में अपने हाथ आजमाने और नए सिरे से सोचने को प्रेरित करती है। मिसाल के तौर पर हमारी सोशल रोबोट गैलरी में आप दुनिया भर के कारखानों और मशीनों में काम करने वाले रोबोटों के बारे में जानने के साथ साथ कोई नया रोबोट बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ पहले आपको आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद आप रोबोट बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
बच्चों से हमने किसी साइबर जासूस प्रदर्शनी के बारे में भी सुना है।
जी हाँ, साइबर जासूस प्रदर्शनी में इंटरनेट सुरक्षा के बारे में सिखाया जाता है, जो आजकल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस प्रदर्शनी में पहले आपको सिखाया जाता है कि गुप्त संदेशों को कैसे खोलते हैं, ट्रोजन यानी छिपे प्रोग्रामों और वायरसों को कैसे पहचानते हैं और नेटवर्क को कैसे सुरक्षित करते हैं।
टेक स्टूडियो के बारे में भी काफी सुना है, वहां क्या होता है?
टेक स्टूडियो एक विशालकाय गैलरी है जहां विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित और कला से जुड़ी एक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला में लोगों को ऐसे कंप्यूटर ऐप बनाना सिखाया जाता है जिनसे सामाजिक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिले। इसके अलावा निरंतर इस बात पर विचार किया जाता है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करें।
यानी समाज को बदलने वाली तकनीकों का विकास करने की बजाय ऐसी तकनीक का विकास करने पर जोर दिया जाता है जो समाज और परिवेश की जरूरतों को पूरा कर सके।
जी हाँ, इसी को समुचित तकनीक भी कहते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे शरीर की दुनिया पर भी एक प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में आप अपने शरीर के भीतर जाकर देख सकते हैं कि हमारे अंग प्रत्यंग किस तरह काम करते हैं। मानव त्वचा के नीचे छिपी इस दुनिया के रहस्य जानकर चिकित्सा के विद्यार्थी भी दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं।
और बाहर से ये जो गुंबद जैसा दिखाई देता है, उसके भीतर क्या है?
इसमें अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक गैलरी है जहां आप अमरीकी अंतरिक्ष संस्था नासा के यान की सवारी करके अंतरिक्ष यात्रा का रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
नील देसाई जी, तकनीक आविष्कार संग्रहालय की इतनी रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। नील देसाई जी, नए क्षितिज के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रभा जी।
नील जी, आपको अपने तकनीक आविष्कार संग्रहालय की बढ़ती लोकप्रियता और धाक की मुख्य वजह क्या लगती है?
आपकी बात सही है प्रभा जी, तकनीक आविष्कार संग्रहालय को बने लगभग 20 साल ही हुए हैं, फिर भी हमारे कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमें दूसरे संग्रहालयों से अलग और अनूठा बनाते हैं। जैसे विज्ञान और तकनीक के कठिन विषयों को सरल और रोचक बनाना, नए आविष्कारों और समाधानों की खोज के लिए मंच प्रदान करना और जलवायु जैसे सामयिक विषयों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
यानी आपका संग्रहालय वास्तव में एक तरह की प्रायोगिक पाठशाला है।
जी हाँ, एक ऐसी पाठशाला जो आपको तकनीकों और आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ नई तकनीकों के विकास में अपने हाथ आजमाने और नए सिरे से सोचने को प्रेरित करती है। मिसाल के तौर पर हमारी सोशल रोबोट गैलरी में आप दुनिया भर के कारखानों और मशीनों में काम करने वाले रोबोटों के बारे में जानने के साथ साथ कोई नया रोबोट बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ पहले आपको आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद आप रोबोट बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
बच्चों से हमने किसी साइबर जासूस प्रदर्शनी के बारे में भी सुना है।
जी हाँ, साइबर जासूस प्रदर्शनी में इंटरनेट सुरक्षा के बारे में सिखाया जाता है, जो आजकल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस प्रदर्शनी में पहले आपको सिखाया जाता है कि गुप्त संदेशों को कैसे खोलते हैं, ट्रोजन यानी छिपे प्रोग्रामों और वायरसों को कैसे पहचानते हैं और नेटवर्क को कैसे सुरक्षित करते हैं।
टेक स्टूडियो के बारे में भी काफी सुना है, वहां क्या होता है?
टेक स्टूडियो एक विशालकाय गैलरी है जहां विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित और कला से जुड़ी एक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला में लोगों को ऐसे कंप्यूटर ऐप बनाना सिखाया जाता है जिनसे सामाजिक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिले। इसके अलावा निरंतर इस बात पर विचार किया जाता है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करें।
यानी समाज को बदलने वाली तकनीकों का विकास करने की बजाय ऐसी तकनीक का विकास करने पर जोर दिया जाता है जो समाज और परिवेश की जरूरतों को पूरा कर सके।
जी हाँ, इसी को समुचित तकनीक भी कहते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे शरीर की दुनिया पर भी एक प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में आप अपने शरीर के भीतर जाकर देख सकते हैं कि हमारे अंग प्रत्यंग किस तरह काम करते हैं। मानव त्वचा के नीचे छिपी इस दुनिया के रहस्य जानकर चिकित्सा के विद्यार्थी भी दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं।
और बाहर से ये जो गुंबद जैसा दिखाई देता है, उसके भीतर क्या है?
इसमें अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक गैलरी है जहां आप अमरीकी अंतरिक्ष संस्था नासा के यान की सवारी करके अंतरिक्ष यात्रा का रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
नील देसाई जी, तकनीक आविष्कार संग्रहालय की इतनी रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 15। पश्चिमी अफ्रीका के देश लाइबेरिया की किशोर फुटबॉल खिलाड़ी जेसिका कोची के साथ
खेल पत्रकार अतुल दास की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। ये बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी। जेसिका कोची, खेल जगत के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद अतुल जी, भारत के खेल प्रेमियों के बीच आकर अच्छा लग रहा है।
हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है जेसिका। सबसे पहले तो अपने और अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए, हमारे युवा साथी आपके बारे में जानने को काफी बेचैन हैं।
तब तो उन्हें मायूसी ही होगी, क्योंकि मेरा परिचय कुछ खास नहीं है। हमारा घर लाइबेरिया की राजधानी मनरोविया की एक कच्ची बस्ती में है। हमें बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। घरों में शौचालय तक नहीं है।
ऐसे में आपने फुटबॉल खेलना कैसे और कहां से सीखा?
इसकी भी एक लंबी कहानी है। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मुझे भी उनकी तरह मछली बेचकर पेट पालना पड़े, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया। वे बाजार से थक कर लौटती और घर के काम में जुट जाती। वैसे स्कूल में तो मैं कुछ खास नहीं सीख पाई, लेकिन स्कूल से घर लौटकर गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया।
क्या मनरोविया में बच्चियां भी फुटबॉल खेलती हैं?
नहीं, यही तो समस्या थी। बस्ती के कुछ लड़के शाम को फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन वे मुझे अपने साथ खिलाने को राजी नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, ये उनका खेल नहीं है।
तो फिर आपने क्या किया?
कुछ नहीं, बस हार नहीं मानी। फुटबॉल खेलने वाले लड़के मुझसे उम्र में भी काफी बड़े थे, लेकिन मेरी जिद को देखते हुए पहले तो उन्होंने मुझे गेंद को उठा उठा कर लाने का काम सौंपा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पांव की फुर्ती देखकर साथ में खिलाना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मैं उनको हराने लगी।
यानी आपके भीतर फुटबॉल खिलाड़ी की नैसर्गिक प्रतिभा थी। उसके बाद क्या हुआ?
एक दिन मनरोविया की फुटबॉल अकादमी के एक सदस्य ने मुझे खेलते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे मैदान में खेलने का न्योता दिया। वहां मेरी कला देखकर वे दंग रह गए और उन्होंने मेरी माँ से संपर्क किया।
और आपकी माँ की प्रतिक्रिया क्या थी?
पहले तो माँ को समझ में ही नहीं आया कि अकादमी वाले चाहते क्या थे। वे भी यही समझती थीं कि फुटबॉल तो लड़कों का खेल है, लेकिन अकादमी वालों ने उन्हें समझाया कि अकादमी में उनकी लड़की को फुटबॉल के प्रशिक्षण के साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा। ये सुनकर वे तैयार हो गईं।
तो आप फुटबॉल अकादमी में भर्ती हो गईं?
जी हाँ, लेकिन मनरोविया की फुटबॉल अकादमी में खेलने वाली मैं पहली लड़की थी। इससे पहले किसी ने लड़की को फुटबॉल के मैदान में खेलते नहीं देखा था। मेरी लड़कों जैसी पोशाक देखकर लड़के मुझे लड़का कहकर चिढ़ाते भी थे।
आपको बीबीसी ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया था, क्या आपको मिला वह पुरस्कार?
नहीं, पुरस्कार तो नहीं मिला। हाँ, एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहली बार विमान में सवारी करने का मौका मिला। ये मेरे लिए रोमांचक अनुभव था।
अच्छा, आपको फुटबॉल के खेल का कौन सा पहलू सबसे रोचक लगता है?
मुझे लड़कों को हराना अच्छा लगता है। मैं उनसे कतई नहीं डरती और उनसे बेहतर खेलती हूँ। ये सही है कि बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में लड़कों के साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन घरेलू प्रतियोगिताओं में मैंने कई बार लड़कों को हराया है।
जेसिका कोची, अपने जीवन और फुटबॉल यात्रा पर रोचक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे मंच देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। जेसिका कोची, खेल जगत के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद अतुल जी, भारत के खेल प्रेमियों के बीच आकर अच्छा लग रहा है।
हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है जेसिका। सबसे पहले तो अपने और अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे युवा साथी आपके बारे में जानने को काफी बेचैन हैं।
तब तो उन्हें मायूसी ही होगी, क्योंकि मेरा परिचय कुछ खास नहीं है। हमारा घर लाइबेरिया की राजधानी मनरोविया की एक कच्ची बस्ती में है। हमें बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। घरों में शौचालय तक नहीं है।
ऐसे में आपने फुटबॉल खेलना कैसे और कहां से सीखा?
इसकी भी एक लंबी कहानी है। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मुझे भी उनकी तरह मछली बेचकर पेट पालना पड़े, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया। वे बाजार से थककर लौटती और घर के काम में जुट जाती। वैसे स्कूल में तो मैं कुछ खास नहीं सीख पाई, लेकिन स्कूल से घर लौटकर गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया।
क्या मनरोविया में बच्चियां भी फुटबॉल खेलती हैं?
नहीं, यही तो समस्या थी। बस्ती के कुछ लड़के शाम को फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन वे मुझे अपने साथ खिलाने को राजी नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, ये उनका खेल नहीं है।
तो फिर आपने क्या किया?
कुछ नहीं, बस हार नहीं मानी। फुटबॉल खेलने वाले लड़के मुझसे उम्र में भी काफी बड़े थे, लेकिन मेरी जिद को देखते हुए पहले तो उन्होंने मुझे गेंद को उठा उठा कर लाने का काम सौंपा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पांव की फुर्ती देखकर साथ में खिलाना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मैं उनको हराने लगी।
यानी आपके भीतर फुटबॉल खिलाड़ी की नैसर्गिक प्रतिभा थी। उसके बाद क्या हुआ?
एक दिन मनरोविया की फुटबॉल अकादमी के एक सदस्य ने मुझे खेलते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे मैदान में खेलने का न्योता दिया। वहां मेरी कला देखकर वे दंग रह गए और उन्होंने मेरी माँ से संपर्क किया।
और आपकी माँ की प्रतिक्रिया क्या थी?
पहले तो माँ को समझ में ही नहीं आया कि अकादमी वाले चाहते क्या थे। वे भी यही समझती थीं कि फुटबॉल तो लड़कों का खेल है, लेकिन अकादमी वालों ने उन्हें समझाया कि अकादमी में उनकी लड़की को फुटबॉल के प्रशिक्षण के साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा। ये सुनकर वे तैयार हो गईं।
तो आप फुटबॉल अकादमी में भर्ती हो गईं?
जी हाँ, लेकिन मनरोविया की फुटबॉल अकादमी में खेलने वाली मैं पहली लड़की थी। इससे पहले किसी ने लड़की को फुटबॉल के मैदान में खेलते नहीं देखा था। मेरी लड़कों जैसी पोशाक देखकर लड़के मुझे लड़का कहकर चिढ़ाते भी थे।
आपको बीबीसी ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया था, क्या आपको मिला वह पुरस्कार?
नहीं, पुरस्कार तो नहीं मिला। हाँ, एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहली बार विमान में सवारी करने का मौका मिला। ये मेरे लिए रोमांचक अनुभव था।
अच्छा, आपको फुटबॉल के खेल का कौन सा पहलू सबसे रोचक लगता है?
मुझे लड़कों को हराना अच्छा लगता है। मैं उनसे कतई नहीं डरती और उनसे बेहतर खेलती हूँ। ये सही है कि बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में लड़कों के साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन घरेलू प्रतियोगिताओं में मैंने कई बार लड़कों को हराया है।
जेसिका कोची, अपने जीवन और फुटबॉल यात्रा पर रोचक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे मंच देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास चार सुनेंगे। अब आप अभ्यास चार के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास चार, प्रश्न 16 से 23। कारोबारों के सामाजिक दायित्व पर समाजशास्त्री धनंजय बागची के विचारों को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। उनके विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
अगर इतिहास के पन्नों में लौटें, तो ऐसा नहीं है कि लोक कल्याण के काम सिर्फ बड़े सोच रखने वाले महान लोगों ने ही किए हों। ऐसे कामों में कारोबारी लोग भी पीछे नहीं रहे। 16वीं सदी में इस सिलसिले में राजस्थान में बावड़ी बनाने का काम काफी हुआ। मकसद था सूखे धूल भरे मैदानों में पहुंचे घुमक्कड़ों की प्यास बुझाना। हालांकि इस काम को तब कॉरपोरेट या कारोबारी जगत के सामाजिक दायित्व के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन इसके पीछे भावना बहुत कुछ वैसी ही थी। इसके बाद लोगों के सामने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का नाम सामाजिक दायित्व के मानक के रूप में सामने आया, जिन्होंने गांधी जी के इस विचार को अपने दिल में बसा लिया कि व्यापारियों को इस तरह से काम करना चाहिए कि उनके पास जो धन है वह जनता का है और वे उसके रखवाले भर हैं। हालांकि कॉरपोरेट या कारोबारी सामाजिक दायित्व अक्सर सुना जाने वाला जुमला है, लेकिन इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। बॉस्टन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ ब्रैडली गुगिंग्स कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कारोबारी सामाजिक दायित्व का सवाल बहुत कुछ चैरिटी या लोकोपकार से जुड़ा है, लेकिन हकीकत में यह उससे कहीं बड़ी बात है। यह अपने नजरिए को व्यापक बनाने की कोशिश है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई कंपनी अपने मूल्यों को व्यवहार में किस तरह अमल में लाती है, उनके उत्पाद किस तरह के हैं, कर्मचारियों से व्यवहार कैसे किया जाता है, पर्यावरण को लेकर नजरिया क्या है और किस तरह से कंपनी चलाई जा रही है। कारोबारी सामाजिक दायित्व को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो इससे किसी भी कंपनी की छवि में सुधार तो होता ही है, इससे कर्मचारियों की भर्ती और उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। योग्य उम्मीदवार अब सिर्फ मोटी तनख्वाह की ही मांग नहीं करते, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि वे उसी कंपनी में काम करें जिसकी छवि भी सकारात्मक हो। कारोबारी नेतृत्व को भी अब यह स्वीकार करने में हिचक नहीं रही कि इसके बारे में उनके पहले के प्रयासों में तालमेल और निरंतरता का अभाव था। अब उनको यह समझ में आ गया है कि महज परोपकारी संस्थाओं को चेक काट कर देने से ही कारोबारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। यह बात विदेशी कंपनियों के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि कारोबारी संघ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक पुरस्कार रखा है, जिसे वर्ष के अंत में दिया जाता है। अमरीका की एक सलाहकार कंपनी इस पुरस्कार की विजेता कंपनियों में शामिल है। इस कंपनी ने अपनी कारोबारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू करने का दृष्टिकोण अपनाया है। कंपनी के मुख्यालय की तरफ से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रक्तदान शिविरों में हमेशा ही भारी तादाद में लोग हिस्सा लेते आए हैं। इसके अलावा यह कंपनी अखिल भारतीय दृष्टिबाधित महासंघ में रोजगार के लिए चल रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। यह सलाहकार कंपनी ऐसी मानव संसाधन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है जो खुद के लिए कर्मचारी चुनने के साथ साथ दूसरे कारोबारी क्षेत्रों में भी पहुंचती हैं। वहां उनकी कोशिश इस तथ्य को सामने लाने की होती है कि किस तरह दृष्टिदोष के शिकार व्यक्ति भी कर्मचारी के रूप में समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कंपनी ने इसी तरह का एक स्नातक अपने ऑफिस के लिए भी चुना है, जबकि कई दूसरे विद्यार्थियों को आईटी कंपनियों में तकनीकी लेखक और कॉल सेंटर कर्मचारी के रूप में चुना गया है। दृष्टिबाधित महासंघ के अधिकारी ऐसे मददगारों से उकता चुके हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को खाना खिलाने का प्रस्ताव करते हैं। वे कहते हैं, सभी उन्हें भोजन और आवास देने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस ढंग से प्रशिक्षित नहीं करना चाहता कि वे बाजार में अपने दम पर मुकाबले में खड़े हो सके। अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले स्नातकों के लिए यह ऐसा उपहार है जो जीवन भर के लिए है।
अभ्यास चार के इन विचारों को अब आप फिर से सुनेंगे।
अगर इतिहास के पन्नों में लौटें, तो ऐसा नहीं है कि लोक कल्याण के काम सिर्फ बड़े सोच रखने वाले महान लोगों ने ही किए हों। ऐसे कामों में कारोबारी लोग भी पीछे नहीं रहे। 16वीं सदी में इस सिलसिले में राजस्थान में बावड़ी बनाने का काम काफी हुआ। मकसद था सूखे धूल भरे मैदानों में पहुंचे घुमक्कड़ों की प्यास बुझाना। हालांकि इस काम को तब कॉरपोरेट या कारोबारी जगत के सामाजिक दायित्व के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन इसके पीछे भावना बहुत कुछ वैसी ही थी। इसके बाद लोगों के सामने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का नाम सामाजिक दायित्व के मानक के रूप में सामने आया, जिन्होंने गांधी जी के इस विचार को अपने दिल में बसा लिया कि व्यापारियों को इस तरह से काम करना चाहिए कि उनके पास जो धन है वह जनता का है और वे उसके रखवाले भर हैं। हालांकि कॉरपोरेट या कारोबारी सामाजिक दायित्व अक्सर सुना जाने वाला जुमला है, लेकिन इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। बॉस्टन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ ब्रैडली गुगिंग्स कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कारोबारी सामाजिक दायित्व का सवाल बहुत कुछ चैरिटी या लोकोपकार से जुड़ा है, लेकिन हकीकत में यह उससे कहीं बड़ी बात है। यह अपने नजरिए को व्यापक बनाने की कोशिश है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई कंपनी अपने मूल्यों को व्यवहार में किस तरह अमल में लाती है, उनके उत्पाद किस तरह के हैं, कर्मचारियों से व्यवहार कैसे किया जाता है, पर्यावरण को लेकर नजरिया क्या है और किस तरह से कंपनी चलाई जा रही है। कारोबारी सामाजिक दायित्व को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो इससे किसी भी कंपनी की छवि में सुधार तो होता ही है, इससे कर्मचारियों की भर्ती और उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। योग्य उम्मीदवार अब सिर्फ मोटी तनख्वाह की ही मांग नहीं करते, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि वे उसी कंपनी में काम करें जिसकी छवि भी सकारात्मक हो। कारोबारी नेतृत्व को भी अब ये स्वीकार करने में हिचक नहीं रही कि इसके बारे में उनके पहले के प्रयासों में तालमेल और निरंतरता का अभाव था। अब उनको ये समझ में आ गया है कि महज परोपकारी संस्थाओं को चेक काट कर देने से ही कारोबारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। यह बात विदेशी कंपनियों के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि कारोबारी संघ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक पुरस्कार रखा है, जिसे वर्ष के अंत में दिया जाता है। अमेरिका की एक सलाहकार कंपनी इस पुरस्कार की विजेता कंपनियों में शामिल है। इस कंपनी ने अपनी कारोबारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू करने का दृष्टिकोण अपनाया है। कंपनी के मुख्यालय की तरफ से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रक्तदान शिविरों में हमेशा ही भारी तादाद में लोग हिस्सा लेते आए हैं। इसके अलावा यह कंपनी अखिल भारतीय दृष्टिबाधित महासंघ में रोजगार के लिए चल रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। यह सलाहकार कंपनी ऐसी मानव संसाधन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है जो खुद के लिए कर्मचारी चुनने के साथ साथ दूसरे कारोबारी क्षेत्रों में भी पहुंचती हैं। वहां उनकी कोशिश इस तथ्य को सामने लाने की होती है कि किस तरह दृष्टि दोष के शिकार व्यक्ति भी कर्मचारी के रूप में समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कंपनी ने इसी तरह का एक स्नातक अपने ऑफिस के लिए भी चुना है, जबकि कई दूसरे विद्यार्थियों को आईटी कंपनियों में तकनीकी लेखक और कॉल सेंटर कर्मचारी के रूप में चुना गया है।
दृष्टिबाधित महासंघ के अधिकारी ऐसे मददगारों से उकता चुके हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को खाना खिलाने का प्रस्ताव करते हैं। वे कहते हैं सभी उन्हें भोजन और आवास देने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस ढंग से प्रशिक्षित नहीं करना चाहता कि वे बाजार में अपने दम पर मुकाबले में खड़े हो सके। अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले स्नातकों के लिए यह ऐसा उपहार है जो जीवन भर के लिए है।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।